वो दीवार जो से उन्होंने याजूज और माजूज को बंद रखा हुआ है। इंसान अपनी ही दुनिया के अंदर उस दीवार को अभी तक नहीं पहचान सका कि वो दीवार कहाँ है। वो दीवारें चीन नहीं है, वॉल ऑफ चाइना नहीं है। आपके पास कितना बड़ा सैटेलाइट आ जाए, आप कितना ज्यादा जो है वो बहुत ही मैग्निफाइड सोफिस्टिकेटेड जो हैं वो अपनी चीजें बना लें और गैजेट्स बना लें, बट नोबडी नोज कि वो दीवार कहाँ है जहां ज़ुल्क़रनैन ने उसको बनाकर याजूज माजूज को एक तरफ बंद किया हुआ है। ये इंसानी अकल की लिमिटेशन है। इट्स अ मैटर ऑफ कम्प्लीटली बिलीव इन अनसीन। और जो इंसान, जो मुसलमान बेयर मिनिमम यानी इस्लाम की इबादत को अडॉप्ट करने के साथ साथ अल्लाह के लिए अपनी अकल को अनसीन के ताबे कर देता है, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंटेलेक्चुअली आप उनमें कामयाब कैसे होंगे, जब हम अकल को कुरान के पीछे रखेंगे। अकल को कुरान के आगे लेकर जाएंगे तो बहुत धोखा खाएंगे। मोमिन वो होता है यक्षाउन रब्बहुम की कैटेगरी वाला जो इंटेलेक्चुअल इम्तिहान में कामयाब होता है, अकल को पीछे रखता है और अपने रैशनल को हमेशा पीछे रखता है। दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट। हर मामले में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कुरान में जितनी मरतबा अतीउल्लाह आया है, एवरी टाइम इट इज कपल्ड विद अतीउर रसूल। इनफैक्ट एक मरतबा अतीउर रसूल अकेला आया है, वहां अतीउल्लाह आया भी नहीं है। तो जब हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को जहन में रखेंगे कि अल्लाह की बात मान लो, कुरान इज इनफ फॉर मी, काफी है मैं कुरान पर अमल कर लूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में डाउट है, ये तो इतने 100 साल के बाद लिखी गई, इनके अंदर तो आज भी जो है वो सही और हसन की कैटेगरी बनती रहती है, तो बेहतर है कि स्टिक योर सेल्फ टू द कुरान। इट्स अ फितना, कम्प्लीटली इट्स अ फितना। आप कुरान की इताअत कर नहीं सकते, आप अल्लाह की इताअत कर नहीं सकते जब तक कि आप अतीउर रसूल नहीं करेंगे, जब तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन को नहीं समझेंगे। तो अल्लाह के रसूल की पोजीशन को समझना, अपनी अकल को अहदीस के ताबे लेकर आना, ये अहदीस के ताबे लेकर आना ही है। बात समझ आए या ना समझ आए, सबमिट करें। सबमिट करने में जरूरी नहीं होता मुझे पहले लॉजिक दें, समझ आएगी तो मानूंगी, नहीं। सबमिट करने में आपने समयना व अताना करना है, और कैसे करना है, तौ अन व करहन, दिल करे या ना करे, समझ आए या ना आए, आपने और मैंने अल्लाह की बात को मानना है। तो ये सेकंड इम्तिहान है हमारा जो अल्लाह ताला शरीयत में हम लेते हैं, ये कम्प्लीटली बेस्ड है ईमानियात पर। आपके और मेरे लिए तो रसूल भी ईमान बिल गैब में आते हैं। सहाबा ने अपने सर की आंखों से रसूलुल्लाह को देखा था, उससे पिछले रसूल तो सहाबा ने नहीं देखे थे। आपने और मैंने ना पिछले रसूल देखे ना अल्लाह के रसूल देखे, तो आपके और मेरे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना सॉर्ट ऑफ ईमान बिल गैब है। तो जितना इंटेलेक्चुअली इंसान इसमें कामयाब होता है, उसका ईमान का लेवल बढ़ता रहता है। तीसरा, शरीयत हमारा टेस्ट लेती है उसी एंगल से जो कि हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट है इंसान की एग्जिस्टेंस का, और वो थर्ड कॉम्पोनेंट है हमारा स्पिरिचुअल पार्ट, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। हदीस जिब्राइल के मुताबिक हमारा ये थर्ड टेस्ट जो है ये एहसान के लेवल से अडॉप्टेड है। हम अल्लाह को नहीं देख सकते, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, इसीलिए हम जो इबादत करते हैं वो इस ईमान के साथ करते हैं कि अगर हमें अल्लाह नजर नहीं आता तो क्या हुआ, अल्लाह हमें देखता है। दिस इज अबव रैशनल। एहसान अडॉप्ट करना अबव रैशनल। बाज दफा आपको दलील मिलती है चेहरा कवर करने की, बाज दफा आपको एक दूसरी तरफ दलील नहीं मिलती, ये मैं आपको बता दूं, दिस इज अबव रैशनल। ये तकवे का लेवल है, या आपका और आपके रब का मामला है, या आपका और आपके रब से ताल्लुक का मामला है, या आपकी और आपके रब की मोहब्बत है, कितना आपका दिल चाहता है एहसान अडॉप्ट करने का। जब दुनिया में बेस्ट मांगते हैं तो दीन में अमल करते हुए बेस्ट की तरफ क्यों नहीं दौड़ते। एहसान का लेवल, इंसान अपने आप को उस बाबरकत हस्ती से अटैच कर लेता है जिसके लिए वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहता है। आपने दो टर्म सुनी है, These terms are related with Sufism, लेकिन अगर आप इनकी बेस चेक करें तो अरबिक लैंग्वेज के अंदर दे आर वेरी स्ट्रांगली एम्बेडेड इन शरिया, अगर आप इनके ओरिजिनल मीनिंग्स पर जाएं। एक है मुशाहदा और एक है मुराकबा। दिस मुशाहदा इज कि मुझे अपने आसपास हर चीज में, अल्लाह मुझे नजर नहीं आता लेकिन मुझे अपने आसपास हर चीज में अल्लाह की डोमिनियन और अल्लाह की अथॉरिटी और अल्लाह की मोहब्बत महसूस हो। हर मखलूक में अल्लाह की मुझे इफेक्ट्स और अल्लाह की कुदरत नजर आए, दिस इज कॉल्ड मुशाहदा। मोमिन एहसान करने वाला मोमिन ऑब्जर्वेंट होता है, उसके लिए हर दूसरा इंसान, उसके लिए हर आसपास का कोई भी इंसिडेंट, उसके लिए कोई ना कोई मौका, उसके लिए हर दिन अल्लाह का मुशाहदा करने के लिए एक एक्सपीरियंस होता है। अल्लाह हमें नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह की आयात हमारे इर्द गिर्द बिखरी हैं, चाहे वो आफाक में हो, चाहे वो हमारे अनफुस में हो, चाहे वो हमारे आसपास की किसी इंसान की शक्ल में हो या वो कुरान की हो। मुशाहदा स्ट्रांग होता है मोहसिन का, दिस थर्ड लेवल जिसमें शरीयत हमारा एहसान का टेस्ट लेती है, स्पिरिचुअल टेस्ट लेती है। इसमें इंसान अपने आप को अल्लाह से ऐसा अटैच कर लेता है कि उसको हर शय में अल्लाह की कुदरत नजर आती है। एंड द सेकेंड टर्म इज मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं? दरख्त से उल्टे लटक जाए, मुराकबा कहते हैं उसको बाय डेफिनेशन, मालूम? मुराकबा के साथ अल्लाह का एक नाम याद रखिएगा हमेशा, अर रकीब। मुराकबा का टेक्निकल मतलब, सिंपल मतलब यह है, ऐसा इंसान, ऐसा मोहसिन इंसान जो हर वक्त अल्लाह को एज अ रकीब महसूस करता रहता है। अल्लाह का नाम है अर रकीब। अर रकीब का मतलब होता है वो जिसने मेरी गर्दन, नेप ऑफ द नेक, यहां से पकड़ी हुई है। रकबा अरबी जुबान में इस्तेमाल होता था जब बकरी की गर्दन को इस जगह से पकड़ लेते थे और फिर पकड़ के उसको लिटाते थे जिबा करने के लिए। अल्लाह का नाम अर रकीब। अल्लाह ने अपनी हर मखलूक के ऊपर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत रखी हुई। अल्लाह रकीब है। मुराकबा करने वाला मुसलमान अपने बेयर मिनिमम से ऊपर उठकर, अपने ईमान को मजबूत करकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी को गेन करके मुराकबा की स्टेज पर आता है और मोहसिन बन जाता है। उसको हर वक्त अल्लाह की प्रेजेंस महसूस होती है। अल्लाह अस्समी, अल्लाह अलबसीर है। मुराकबा में अगर आपको ये अल्लाह का नाम अर रकीब याद रहेगा तो इंशाल्लाह फिर आपको इसकी कभी भी गलत डेफिनेशन जहन में नहीं आएगी। जहां पर खुतबा निकाह की आयात है सूरह निसा में पहली आयत में जाकर आज पढ़िएगा, अल्लाह का यही नाम आता है। खुतबा निकाह के अंदर दूल्हा और दुल्हन और दोनों खानदानों को अल्लाह के इस नाम के जरिए वार्न किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर ज्यादतियां मत करना। अल्लाह रकीब है। जो जालिम होगा अल्लाह सब जानता है, और अल्लाह की गिरफ्त अपनी मखलूकात पर इतनी मजबूत है कि अल्लाह जिस वक्त चाहे हमारी गर्दन मरोड़ दे, लिटरली। मुराकबा इज द रियलाइजेशन कि मुझे अल्लाह किसी वक्त भी पकड़ सकता है, इसलिए कि वो ऑब्जर्व करता है मेरे हर मूव को। तो ये है वो इंसान जो अपनी जिंदगी में खशियत इख्तियार करता है और शरीयत के इन तीन टेस्ट के अंदर अपने आप को हमेशा अलर्ट रखता है। इबादात के जरिए इस्लाम को मेंटेन करता है, इंटेलेक्ट के जरिए ईमान को मजबूत करता है जो कि अनसीन में है, और कॉन्स्टेंटली अल्लाह को महसूस करते हुए कि अल्लाह मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अंदर मोहसिन बनने की क्वालिटी लेकर आता है। और यही वो क्वालिटी है जो इंशाल्लाह आपको और मुझे अल्लाह और रसूलुल्लाह का पसंदीदा बनाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्नद इमाम अहमद में हदीस आती है जिसका मफहूम आता है, आपने एक मरतबा सहाबा से कहा और उनके सामने अहबाब का जिक्र किया कि मेरे अहबाब जो होंगे वो ऐसे 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 होंगे। तो सहाबा ने फरमाया कि हम आपके अहबाब नहीं हैं। आपने कहा नहीं, तुम मेरे असहाब हो। अंतुम असहाबी, तुम मेरे कंपेनियन हो, तुम मेरे सहाबा हो। ये जो अहबाब होंगे, आपने फरमाया वा अहबाबी अल्लज़ीन युमिनून बी वलम यरौनी, ये वो अहबाब होंगे मेरे, द बिलव्ड वंस, मेरे फेवरेट, मुझसे मोहब्बत करने वाले, जो मुझ पर ईमान लेकर आएंगे लेकिन उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको इस अहबाब की कैटेगरी में रखा है। अगर हम अपनी जिंदगी में रसूल अल्लाह को वो मुकाम देने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह हमसे एक्सपेक्ट करता है, तो आपने फरमाया ये वो होंगे जो मुझ पर ईमान लाएंगे, और आपने उनके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि अल्लाह के रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। आपने कहा हुम अहबाबी हुम असहाबी, तुम अंतुम असहाबी हुम अहबाबी, तुम मेरे असहाब हो और वो मेरे बिलव्ड वंस हैं। तो अपने ईमान को इतना मजबूत करें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर यकीन आए, दिल माने या ना माने, अकल को पीछे कर दें। जब अल्लाह के रसूल ने कहा है कि अगर तुम्हारे मशरूब में मक्खी गिर जाए तो क्या करो, उसको पूरा डिप करो, बाहर निकालो और फिर चाय सिंक में फेंक के आ जाओ, नहीं हमारे ईमान इतने ही कमजोर हैं, हकीकत है। मतलब बड़ी बड़ी हदीसें और बड़े बड़े अहकामात और बड़ी बड़ी तालीमात तो दूर की बात है, अगर हमने अपना ईमान गेज करना है हम सिर्फ इस एक हदीस पर गेज कर सकते हैं। हम सबके ईमान बहुत कमजोर है। 10 मरतबा ख्याल आता है फेंकूंगी नहीं फेंकूं, फेंकूंगी नहीं फेंकूं, फेंकूंगी नहीं, फिर बाज़ दफा इंसान कहता है अच्छा सुन्नत पूरी करते हुए एक सिप लेके फिर जल्दी से फेंक देती हूँ। इतने ही कमजोर ईमान है हमारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब मक्खी गिर जाए सो के रिस्क जाया ना करो, मक्खी को डिप करो इसलिए कि उसके दूसरे पर में शिफा है, और फिर पी जाओ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना मशरूब। लेकिन हमसे नहीं होता ना, हमारे ईमान इतने ही कमजोर हैं। ईमान मजबूत करने का तरीका यही है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ें, उनकी कुर्बानियों के बारे में पढ़ें, उनके अपने बारे में कंसर्न जो हमारे लिए जो उनके कंसर्न थे उसके लिए पढ़ें। वो जो हमारे लिए रातों में खड़े रहते थे, वो जब हमारा दुनिया में कोई आसार ही नहीं थे उस वक्त उन्होंने उम्मती उम्मती कहकर हमारे लिए रातों में दुआएं की हैं, वो जिस वक्त किसी को किसी की परवाह नहीं होगी और एक नफसी नफसी का आलम होगा उस वक्त भी अल्लाह के रसूल उम्मती उम्मती कहकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे कि मेरी उम्मत को बचा ले। बास लोग कहते हैं हदीस ने दीन को सख्त कर दिया है, अगर कुरान होता तो ये तो बहुत आसान होता। कैसे निकलता है हमारी जुबान से ये कि दीन ने, दीन में हदीस ने सख्ती कर दी है? अगर हदीस ना होती इट्स अ गारंटीड कि दीन बहुत सख्त होता। कुरान में आता है जब तुम हज कर लो तो अपने सरों को शेव कर दो, तो क्यों नहीं शेव करते जो हदीसों से चिढ़ते हैं, जो मुनकर हदीस हैं, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस जो है वो आज तक डाउटफुल लगती है, इवन सही अहदीस भी। ये इससे बड़ा फितना क्या होगा, 100 से ज्यादा सही अहदीस हैं जो नजूल ईसा ईसा अलैहि सलाम के आने की बात करते हैं, और ये कह दिया जाए कि कोई ईसा अलैहि सलाम नहीं आएंगे, इससे बड़ा फितना क्या होगा। अगर कुरान ये कहता, अगर सिर्फ कुरान को मानना है तो जाए ना, माने ना कुरान। जब आप हज करते हैं और आप अपना एहराम खोलने से पहले अपना हलक कराए ना, फिर मर्दों की तरह करें ना शेव, सर गंजे होके आए ना सारी औरतें, वहां नहीं मानते, वहां तो हदीस के मुताबिक अपने इतने बाल 3 उंगलियों के बराबर पकड़ के काट लेते हैं। तो फिर ये दीन की बातें सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश है और कुछ नहीं है। रसूल की बात बाकी जगहों पर इसलिए नहीं मानी जाती है कि नफ्स पर जद पड़ती है, कम्फर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को थामना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान उसी शख्स का बढ़ेगा जिसके अंदर अल्लाह की खशियत बढ़ेगी। अल्लाह की खशियत इंसान के नफ्स को थामने वाली चीज है। अल्लाह की खशियत इंसान को नाफरमानी से बचा लेती है, हम गुनाह की तरफ नहीं जाते। अल्लाह की खशियत जो है वो अल्लाह का खौफ पैदा करती है। कैसा खौफ? ऐसा खौफ नहीं कि डर डर के हमसे चला नहीं जा रहा, डर डर के हमसे जिंदगी में अमल नहीं किया जा रहा है, ऐसा खौफ कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। जिससे आप मोहब्बत करती हैं आप उसकी नाराजगी से डरती हैं। अल्लाह का जब खौफ रखा जाता है ये रहमान की मोहब्बत है। आप देखें सूरह मुल्क के अंदर ग्राफिक वार्निंग्स हैं जहन्नुम की, और अल्लाह का नाम आपको रहमान मिलता है 2 मरतबा कम से कम। क्यों? इसलिए कि रहमान का मतलब ये नहीं है कि वो जो आपके साथ खुदा ना खास्ता कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ गुस्से से मामला करने वाला है, वो उसकी मोहब्बत है कि वो हमें नाफरमानियों से बचाकर जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है। तो मोमिन कौन होता है? जो उसके इख्तियार की वजह से उसका खौफ करता है। मोमिन वो है जो ये हकीकत पहचान गया है, आज टेक्नोलॉजी के दौर में भी पहुंचकर, 2019 में पहुंचकर भी हर वो इंसान अपने ईमान के साथ मजबूत है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि फिजिकल दुनिया के अंदर भी इतनी साइंस की तरक्की के बावजूद, जहां तक साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, जहां तक आसमान की बुलंदियों तक इस वक्त जो है वो फिजिक्स अपनी कैलकुलेशंस में चली गई है, आज भी आसमान के किनारे किसी को नहीं मालूम है। दिस इज ह्यूमन लिमिटेशन। जब हम फिजिकल दुनिया में लिमिटेड हैं अपनी अकल के हिसाब से, तो स्पिरिचुअल दुनिया में अकल नहीं आती है। स्पिरिचुअल दुनिया इज बियॉन्ड रैशनल। स्पिरिचुअल दुनिया का एक ही उसूल है, समयना व अताना। सुना हमने और इताअत की हमने। मत दें लॉजिक, मत लाएं अपनी दलीलें, मत कहें मुझे समझ नहीं आती कि ये चीज ऐसी क्यों है। अपने अंदर जितना सबमिशन का पहलू लेकर आएंगे इंशाल्लाह उतनी ये खशियत बढ़ेगी। तो आया इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, इन लोगों की क्वालिटी क्या है कि ये अपने रब से बगैर देखे डरते हैं। इसमें एक मफहूम स्कॉलर्स ये भी करते हैं कि ये तन्हाई में गुनाह नहीं करते, अकेले में गुनाह नहीं करते। और अकेले में गुनाह करने का एक फैक्टर, अम्मा से छुपकर कमरे बंद करके कुंडियां लगा के लॉक करके मैं तो दिल चाहता है बच्चों के कमरे, मैं तो अपने बच्चों के कमरों में से सब कुंडियां निकाल चुकी हूँ स्क्रू से, पता नहीं क्या शौक आता है भाई। चलो मजबूरी है, एसी चल रहे तो सबके कमरों के दरवाजे बंद, अब तो एक माहौल ही बन गया ना। इतने एसी हमारे दौर में नहीं चलते थे, चलते थे मगर इतने नहीं चलते थे, अब तो सब अपने अपने कमरों में बंद। मजीद अब कुंडी भी चढ़ाई हुई बंद से, लॉक भी किया हुआ है। अरे भाई अम्मा अपना कमरा लॉक नहीं करती, अब्बा के साथ मौजूद होती हैं तो, और बच्चे अपना कमरा लॉक कर करके बैठे हुए। ऐसी कौन सी सीक्रेसी है, ये बंद कमरों में क्या होता है? कोई कंप्यूटर भी ऐसी चीज देखते हैं, मोबाइल भी किसी से ऐसे बात कर रहे होते हैं। जब आप माँ बाप को कोई वो चीज दिखाना नहीं चाहते जो नामुनासिब होती है, वरना कुंडी नहीं लगती है। मैं तो अपने बच्चों के कमरों में से कुंडी ही निकाल चुकी हूँ, बच्चे कहते हैं अम्मा तो इतनी जो है ना, बस कहाँ से कुंडी निकाल कर दोबारा से लगा दें। मुझे नहीं पता आप में से यहाँ बच्चियां जो बैठी हैं क्यों लगा दें लॉक अंदर से ज्यादा कौन आएगा? अब्बा तो कभी भी नहीं आते ना बेटियों के कमरों में, तो अब्बा नहीं आते नॉक किया बगैर, अम्मा ही आती हैं धमाका छापा मारने। एंड शी हैज अ राइट टू कम बाय द वे। अम्मा को आप ये नहीं कह सकते अम्मा समथिंग कॉल्ड माय प्राइवेसी, आप कहें शट अप आई कैन कम एनी टाइम, कोई प्राइवेसी नहीं है तुम्हारी। अम्मा के साथ कोई प्राइवेसी नहीं अगर आप अनमैरिड बेटी हैं। हाँ आप मैरिड बेटी हैं तो फिर अम्मा का ख्याल रखेंगी, अगर आप अनमैरिड हैं आपकी अम्मा किसी भी वक्त आपके कमरे में छापा मार सकती हैं। सारी अम्माओं को इजाजत मिल चुकी है, मारिए छापा अपने बच्चों के कमरे में। हाँ लेकिन देखें इसमें जो एक इसमें फैक्टर बहुत बड़ा, इसमें बहुत तफसील से स्कॉलर्स ने बात किया है, इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, वो लोग जो तन्हाई में अपने आप को गुनाह से बचाते हैं। एक ये फैक्टर प्रैक्टिकल नोट पर मैंने बता दिया, बच्चे खुद जानते हैं वो कुंडी क्यों लगाते हैं, वो अपने अम्मा से खुद डिस्कस करें, मुझे ना बताएं, अम्मा खुद उनका हिसाब किताब लेने वाली हैं। दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये आता है मोबाइल फोन पे ये जो पासवर्ड्स लगते हैं, दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ हाइडिंग योर सिंस, आई एम सॉरी टू से दैट। या तो आपके बहुत छोटे बहन भाई हैं, एक साल का है दो साल का है, वो बार बार आपका फोन उठा के ले जाता है, उसकी वजह से आपने लगाया हुआ पासवर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड, चलो ठीक है समझ आती है। घर में दो लोग रहते, चार लोग रहते हैं, दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल 16 साल 20 साल है, दो अम्मा अब्बा हैं। अब्बा तो आपका फोन कभी नहीं उठाएंगे आई एम श्योर, अब्बा नहीं उठाते यूजली, अम्मा ही उठाती है ना। ऐसा क्या डर है अम्मा का कि आपने अपने फोन पर पासवर्ड लगाया हुआ है? मैं आपको इतना बता दूं, मैं सब बच्चों को नहीं कह रही जो पासवर्ड लगाते हैं, लेकिन 85% जो लोग पासवर्ड लगाते हैं दे वॉन्ट टू हाइड समथिंग फ्रॉम एवरीवन इन देयर मोबाइल्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर मोबाइल। मैं इतनी बड़ी औरत आपके सामने बैठी हूँ, आज तक मैंने अपने मोबाइल पर पासवर्ड नहीं लगाया, और वो आईफोन की वजह से लग गया ऑटोमेटिक, क्योंकि वो अपग्रेड होता है तो मेरे पूरे खानदान को पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है, कोई भी मेरा फोन उठाकर उसको खोल सकता है। लेकिन ये पासवर्ड क्यों लगते हैं? अगर पासवर्ड इसलिए लगा है कि कुछ ऐसी नामुनासिब चीज है जो अम्मी ने देख ली तो डांट पड़ेगी, फिर इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब की कैटेगरी में कैसे आएंगे? अम्मा से तो छुप गए पासवर्ड लगा के, बट अबाउट अल्लाह, मुराक़बा याद है ना, आइंदा याद रखिएगा। अम्मा तो कमरे में नहीं होती जब हम कमरा लॉक कर लेते हैं, अम्मा उस वक्त भी नहीं होती जब हम फ्रेंड्स के साथ होते हैं, लेकिन अल्लाह अर-रकीब है, अल्लाह ने मुझे नेप ऑफ द नेक से पकड़ा हुआ है, अल्लाह मेरी शहरक से भी ज्यादा, मेरी जगुलर वेन से भी ज्यादा मुझसे करीब है। तो जब जो लोग अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं जब वो तन्हाई में हो, उनके लिए जन्नत है। जन्नत ऐसे नहीं मिल जाएगी, सस्ती चीज नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू इसके लिए आपको लगानी पड़ेगी, हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। जन्नत ऐसी नहीं मिलती, दुनिया की मामूली मामूली चीजें कम कीमत पर नहीं मिलती हैं, मामूली मामूली चीजें। इतना पैथेटिक लॉन का जोड़ा 8,000 का आता है, इतना पैथेटिक अगले साल पहनने का दिल ही नहीं करता, बिकॉज 25,000 लोगों को आपको पहना हुआ नजर आ जाता है, इतना पैथेटिक, वो भी 8 लोगों ने पहन लिया तो उसके बाद नजर से उतर जाता है। और जन्नत ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जिसके अंदर कोई गम नहीं है, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हंसी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, वो ऐसे ही मिल जाएगी। वी हैव टू पे द प्राइस। अपने आप को इस यख्शौना की कैटेगरी में लाने के लिए अपनी अपनी जिंदगी को फिल्टर करें। अल्लाह ताला ने यहां पर कहा लाहुम मग़फिरतुन व अजरुन कबीर, कबीर का लफ्ज आप देखें जहन्नम वाले वालों के लिए भी आया था, इन अंतुम इल्ला फी दलाल इन कबीर, वो एक्सट्रीम कंफ्यूजन में थे और ये लोग जो थे इनका अजर बताया। आप देखें अगर आप कुरान के अल्फाज की गहराई पर जाएं, कभी कभी दिल चाहता है कि बगैर महदूद किए हुए क्लासेस होनी चाहिए कि हम इतने दिन में खत्म करेंगे और इतने दिन में खत्म करेंगे, क्योंकि जब आप इतने महदूद कर देते हैं ना, लिमिटेड कर देते हैं, तो फिर बहुत सी चीजें जो सामने नजर आ रही होती हैं आप उसको पकड़ के बता नहीं पाते। जो जहन्नुम वाले थे उनके लिए आया था इन अंतुम इल्ला फी दलाल इन कबीर, तुम एक्सेसिव कंफ्यूजन में थे। ये उनकी दुनिया का मामला था या आखरत का? तुम अपनी दुनिया में एक्सेसिव कंफ्यूजन में थे, जब तुम जिंदगी में थे कंफ्यूज थे। और ये जो नेक लोग हैं इनको रिवॉर्ड कौन सा दिया जा रहा है? अजरुन कबीर, इसलिए कि ये अपनी दुनिया में कंफ्यूज नहीं थे। कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका, वही जो जहन्नमियों का तरीका नहीं था, लौकुन्ना नस्माउ औ नाकिलो। अगर कंफ्यूजन को दूर करना है तो सुनना होगा, कुरान के सामने आकर बैठना होगा, कुरान पर वक्त लगाना होगा, इससे कंफ्यूजन दूर होना शुरू हो जाती है। जो कुरान को सुनते हैं उनको अल्लाह ताला सुनने की वजह से मगफिरत और बेहतरीन रिवॉर्ड देगा। दुनिया में मिलेगा इनाम खशियत का और आखिरत में मिलेगा अजरुन कबीर। ये दोनों इनाम मोमिनीन को मिलेंगे। और कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहें। आप देखें ये जो लौकुन्ना नस्माउ औ नाकिलु पीछे आया था, लिसनिंग नस्माउ, नाकिलु थिंकिंग, और यहां आ रहा है यक्षौना से खशियत। खशियत इज रिलेटेड विद इमोशनल मैटर। तो तीन चीजें हैं, लिसनिंग थिंकिंग एंड इमोशनल स्टेट। आप जो सुनते हैं उससे आपका थिंकिंग पैटर्न बनता है। कल बताया था बहुत तफसील से, आप जो सुनते हैं आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती जाती है। तो आप जो सुनते हैं उससे आपका थिंकिंग पैटर्न बनता है, और जैसा आपका थिंकिंग पैटर्न बनता है वही आपका इमोशनल स्टेट होती है। आप अगर बहुत ज्यादा डरने वाली खातून हैं, इसका मतलब है कि आपका थिंकिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, किसी चीज का खौफ आपके जहन में है, आपके ख्यालात में है। अगर आप बहुत ज्यादा जज्बाती खातून हैं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है, इसका भी ये मतलब है कि आपके थिंकिंग पैटर्न में कहीं गलती है। आप ज्यादा वो बातें सुनती हैं जिससे आपका गुस्सा एग्रीवेट होता है। सो दीज थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड, लिसनिंग थिंकिंग एंड योर इमोशनल स्टेट। जितना अच्छी बातों को सुनेंगे उतनी सोच अच्छी बनेगी, उतना इमोशनली आप मैच्योर होंगी। मोमिन इमोशनली मैच्योर होता है। ऐसे नहीं कि सामने वाली आंटी हैं वो किसी को आंखें निकाल रही हैं, रोना आप शुरू हो गए, अम्मी वो मुझे देख के ऐसे कर रही हैं। एक तो हमें आदत होती है ना, हर आते हुए तीर के रास्ते में हम खुद ही आ जाते हैं। एक महफिल में छह सात औरतें बैठी बातें कर रही हैं, घर आकर आपका मूड खराब हो जाता है अचानक से। बेचारे हस्बैंड कहते हैं अच्छी खासी गई थी, पता नहीं क्या हो गया, कौन सा कीड़ा काट गया। बेचारे पूछते हैं क्या हुआ बेगम, खाना अच्छा नहीं था? आप कहते हैं नहीं देखा नहीं था फलां को, कैसी बातें लगा रही थी मुझे। वो बेचारे कहते हैं नहीं आपका नाम तो नहीं लिया था उन्होंने। हम औरतों को आदत होती है, हम हर आते हुए तंज के तीर के रास्ते में खुद ही आ जाते हैं, अरे मुझे ही कह रही हैं। जो ये माइंडसेट बनेगा आपकी मैच्योर इमोशनल पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। मोमिन इंटेलेक्चुअली मैच्योर होता है, मोमिन इबादात के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योर होता है, मोमिन इमोशनली मैच्योर होता है। और ये जब चीजें सब चीजें हमारी स्ट्रांग हो सकती हैं जब हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली कुरान के सामने लाकर बिठाएं। कुरान में आता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा। अल्लाह की खशियत रखने वाले बेहतरीन लोग कौन होते हैं? अल उलमा, यानी इल्म वाले, जो इल्म से जुड़े हुए होते हैं, जो इल्म से कनेक्टेड होते हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इमोशनल मैच्योरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड दीज टू थिंग्स आर नॉट सेपरेबल। जिसके अंदर कुरान के जरिए अकल डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जिसको इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी मिलेगी, डेफिनेटली कुरान उसके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी लेकर आता है। देयर इज नो तफावुत। याद आया, दो आसमानों के दरमियान में, सात आसमानों के दरमियान में कोई तफावुत नहीं है। इसी तरह से कुरान की रोशनी में जो इमोशन क्रिएट होगा, कुरान की रोशनी में जो अकल मिलेगी, देयर इज नो तफावुत इन इट, इट्स ब्यूटिफुली ब्लेंडेड, ब्यूटिफुली ब्लेंडेड। आपकी नमाज आपको बुराई से रोकेगी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अगर नमाजें भी हैं और जुबान अब्यूसिव जुबान भी इस्तेमाल करती है, और जिस्म जो है वो अल्लाह का फोहश बना हुआ है इस वक्त एक मैनिफेस्टेशन में नाफरमानी की, और इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह शामिल हैं, इसका मतलब है नमाज रोक नहीं रही, नमाज सोच समझ कर नहीं पढ़ी जा रही। जब नमाज जिंदा होती है تو انسان کا اسپرچل اور ایموشنل میچورٹی لیول نظر آتا ہے. اور اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کریں کہ اللہ کا کلام آپ کو اپنی زندگی میں زندہ ہوتا ہوا محسوس ہو. آگے فرمایا آیت نمبر 13 میں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ, تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو. انہ علیم بذات الصدور, وہ تمہارے سینوں کے راز جاننے والا ہے. اس آیت کو دونوں طرح سے اسکالرز نے ٹریٹ کیا ہے. جنرل سینس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اسی پیسج میں پیچھے آئے ہوئے کفار کو بھی کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ جو بھی پلاٹ کرتے ہیں, اپنی زندگی میں نافرمانی کے لیے جو بھی پلان بناتے ہیں, اللہ کی ناشکری کے لائف سٹائل کے اندر اپنے آپ کو دین سے دور کرنے کے لیے جو بھی سکیم کرتے ہیں, اللہ سب جانتا ہے, چاہے وہ اس کو ظاہر کریں یا وہ اس کو چھپائیں. اور دوسرا اینگل مومنین کے لیے ہے, اور خاص طور پر زیادہ انکلینیشن مفسرون کی مومنین کے لیے آتی ہے, اس لیے کہ دوسرے پیسج میں آیت نمبر پیچھے والی جو 12 تھی وہ بھی مومنین کے متعلق تھی. تو زیادہ تر مفسرون انکلائنڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو بہترین تسلی دی ہے اس آیت کے اندر. اسروا قولکم او وجہروا بہ, کبھی تم اپنی زبان سے اظہار کر دیتے ہو اللہ کے سامنے اپنی تکلیف کا, دعاؤں کے اندر کبھی اللہ سے کانورسیشن کرتے ہوئے, کبھی اللہ سے کلام کرتے ہوئے. جب انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے تو انسان پھر اللہ سے باتیں کرتا ہے, جب انسان بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ کو بیان کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے چاہے تم کبھی اپنا دکھ بیان کرو, چاہے کبھی تمہارے دل میں تکلیف ہو. دل میں تکلیف ہوتی ہے نا, یہ جو آگے جملہ آیا ہے انہ علیم بذات الصدور, صدر چیسٹ کو کہتے ہیں, اور چیسٹ کے اندر آپ کا پورا ریب کیج اور دل آ جاتا ہے. آپ جیسے یہ بات اکثر سنتی ہیں نا کہ کسی کام نے اٹ میڈ مائی چیسٹ سیزڈ, میرا سینہ تنگ ہو گیا. اس سے سینہ تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بیلٹ لگا لی ہے, آپ کی ریبز بہت ٹائٹ ہو گئی ہیں. دس از فگیوریٹو, آپ کے ایموشنز آپ کے دل میں ہوتے ہیں نا, تو جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں تب آپ کہتی ہیں کہ سینہ تنگ ہو گیا ہے, میرا دل ٹوٹ گیا ہے. ہم کہتے ہیں اب دل ٹوٹ گیا کہ میڈیکل سائنس کے مطابق دل کے دو ٹکڑے ہو گئے, ریپ اپارٹ. دل ٹوٹتا ہے نا, دل ٹوٹتے ہیں ہمارے, آئے ہمارے دل تو ایسے ہر آئے دن ہی ٹوٹتے رہتے, ہر وقت سمت بانڈ سکاچ ٹیپ ایلفی سب جو لگانا چاہیں سب لگی ہوئی ہے, یو ہو سب لگی ہوئی ہے. آئے دن دل ٹوٹتے ہیں نا. دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ کیا وہ دل فزیکلی ٹوٹتا ہے یا ایموشنلی ٹوٹتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں انہ علیم بذات الصدور, جب تمہارا دل ٹوٹتا ہے اللہ جانتا ہے, جب تمہیں ایموشنلی پین ہوتی ہے اس کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ جانتا ہے. اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو مینڈ کرنا جانتا ہے. دس از این ایکسپریشن, بالکل جیسے ہم اردو میں ایک ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں دل کا ٹوٹنا, اللہ نے یہ ایکسپریشن استعمال کیا ہے ہمارے اس دل کے ٹوٹنے کو بتانے کے لیے. انہ علیم بذات الصدور, اللہ تمہارے سینے کی ہر کیفیت کو جانتا ہے, اللہ تمہاری کہی ہوئی اور نہ کہی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے. اور کیوں جانتا ہے؟ آیت نمبر 14 میں آیا الا یعلم من خلق, کس نے بنایا ہے تمہیں, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر, اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے, جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانے گا. اللہ ہیز فل ویو آف یور لائف, اللہ تمہاری زندگی کے ایک ایک قدم کو جانتا ہے. اس کی ہدایت کو تھامو, تمہیں اسپرچولی انٹلیکچولی اور ایموشنلی اسٹرینتھ ملے گی. آپ میں سے جس کو لگتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ایک کمزور پرسنالٹی ہے, بعض اوقات خواتین کو محسوس ہو جاتا ہے نا, بات بات پر رونا آتا ہے, بہت اچھی بات زبان پر آ رہی ہوتی ہے لیکن الفاظوں میں اس کو آرٹیکولیٹ کرنا نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات کسی کو کہی جائے, بعض مائیں اپنے دل کی بات اپنی اولاد کو نہیں کہہ پاتی, بعض بیویاں اپنے دل کی بات اپنے شوہروں کو نہیں کہہ پاتی ہیں, اور اس لیے پھر انسان کی پرسنالٹی آہستہ 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 آہستہ